सफेद दाढ़ी वाला और वो बोलता है कौन बनेगा करोड़पति, कौन है? अमिताभ बच्चन। आपने कैसे पहचाना? इसका मतलब ये इस आवाज में और इस वेश में आपने किसी की स्थापना कर दी। इसकी स्थापना अमिताभ बच्चन की स्थापना है। किसी भी चीज में किसी की भी स्थापना हो जाती है, कोई हमारे अत्यंत प्रिय हो, निकट का संबंध रखने वाले हो, उनकी स्थापना हम उनके द्वारा दी गई किसी गिफ्ट में भी कर लेते हैं। ये गिफ्ट तो मैं आपको नहीं दे सकता, ये तो उनकी दी हुई है, ये तो उनकी निशानी है, अंतिम निशानी है, किसी की यादगार है। तो यादगार है मतलब इस वस्तु में तो वो छिपे, इसमें उनकी पहचान है, इसका नाम है यादगार, ये स्थापना है। तो नाम के साथ साथ स्थापना की बात कही, स्थापना के साथ साथ द्रव्य निक्षेप की चर्चा की। द्रव्य निक्षेप से यदि बात की जाती है, बहुत सारे एग्जाम्पल, भरत चक्रवर्ती कहां से मोक्ष गए पता है आपको? भरत चक्रवर्ती मोक्ष नहीं गए, चक्रवर्ती नहीं गए, मैं तो चक्रवर्ती की पूछ रहा हूं। देखो मोक्ष जाने के बाद, भगवान बन जाने के बाद आज भी उन्हें चक्रवर्ती कहकर के पुकारा जाता है, भरत चक्रवर्ती। अरे चक्रवर्ती तो बहुत पुरानी पोजीशन है, और जैसे जैसे प्रयोग, सैकड़ों प्रयोग है इस तरह के मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे गौतम गणधर, गौतम गणधर कहते हैं, गौतम गणधर की बात कर रहा हूँ मैं, सुनो। आपने गणधर कह रहे हो, ये उनका सच में तो अपमान है, बुरा मत मानना, क्योंकि गौतम स्वामी गणधर के बाद अरहंत बन गए थे, फिर अरहंत के बाद में सिद्ध बन गए। जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो, आप आज भी उनको गणधर देख रहे हो, क्या अपमान है उनका, बोलो। जिनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, जिन्होंने सिद्ध दशा की प्राप्ति कर ली, अभी भी उनको गणधर कहना बहुत बड़ा अपमान है। आपको पता है हमारे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री है ना, राजस्थान के, कहां, गुजरात के मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री है, आप लोगों को वो पुरानी बातें ही याद है क्या, जब आप रहते थे? वो प्रधानमंत्री है, आपको प्रधानमंत्री नहीं दिखता है, वो आपको भारत का प्रधानमंत्री नहीं दिखता, वो आपको गुजराती दिखता है, इतना लगाव है आपको आज भी गुजरात से मनोज भाई। उसको यदि हम आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं कह करके, क्या तो उसका अपमान है? वो उसकी पुरानी पोस्ट थी। इंद्रभूति गौतम को गणधर कहना, गणधर कौन होते हैं पता है आपको? गणधर होते हैं मुनि, मुनिराज होते हैं गणधर। गणधरों की पदवी मुनिराजों से ऊपर नहीं है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती होते हैं, इसके ऊपर गुणस्थान नहीं होता उनका। हाँ मुनिराजों में श्रेष्ठ है, जितने भी मुनिराज हैं, जितना चतुर्विद संघ है उनमें सर्वोपरि है, लेकिन है तो मुनि। इंद्रभूति गौतम गणधर नहीं, भगवान हो गए। गणधर क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास में देखने का एक दृष्टिकोण है, जिसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं। भाव निक्षेप से सो गए सिद्ध परमात्मा ने। सत्वार सूत्र महाशास्त्र दसवें अध्याय के नौवे सूत्र में, किसी महाशास्त्र के चैप्टर नंबर 10 सूत्र नंबर 9 दसवें अध्याय का नौवा सूत्र, उस सूत्र में सिद्ध भगवान ने भेद बताए। सिद्धों में तो कोई अंतर नहीं होता, सिद्ध तो सब एक समान होते, हर शरीर ही होते, सिद्ध भगवान एक समान होते हैं, लेकिन फिर भी पहले कहां से आए थे, पिछले जन्म में क्या थे, पिछले भाव में क्या थे, सिद्ध बनने के पहले राजा थे कि तीर्थ थे, कि तीर्थंकर के काल में हुए थे कि बिना तीर्थंकर के काल में हुए थे, सिद्ध बने थे उस समय वो चौथे काल से हुए थे कि पंचम काल में मोक्ष जाके आए हैं, एक साथ हुए थे कि अकेले हुए थे, स्त्री वेद से हुए थे, पुरुष वेद से हुए थे, नपुंसक वेद से हुए थे, अरे कितने प्रकार से भेद बतलाते हैं, बहुत तरह से चर्चा करते हैं पास्ट से। तो ये चर्चाएं शास्त्रों में भी इस तरह की होती रही है। ये सब है निक्षेप, जानने के उपाय है। आगे बढ़ते हैं जानने के उपायों में, दो उपाय और बहुत इम्पोर्टेंट आगे कहे जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सुंदर प्रकरण है। प्रमाण नए अधिगमे है, प्रमाण नए अधिगमे है, प्रमाण नए अधिगमे है। जब तक सब नहीं बोलोगे तब तक बुलवाता रहूंगा। प्रमाण नए अधिगमे है, प्रमाण नए अधिगमे है। क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो, प्रमाण एक शब्द है, प्रमाण, फिर है नयी नयी, फिर है अधिगम है, अधिगम है, अधिगम माने ज्ञान, ज्ञान उपदेश। तो प्रमाण से और नय से अधिगम होता है, प्रमाण और नय से जाना जाता है। प्रमाण और नय जानने के उपाय हैं, प्रमाण से जानो और नय से जानो। क्या आप प्रमाण से जानो, नय से जानो, किसको जाने, पदार्थों को, क्या नहीं, प्रमाण क्या होता है और नय क्या होता है। ठीक है, प्रमाण मतलब प्रूफ, नय मतलब आंखें। ज्ञान का एक अंश वो क्या है, वो नये, वो प्रमाण क्या है, अपेक्षा, नये अपेक्षा है, वो प्रमाण, प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है, जन नहीं मालूम। देखो दोनों ही ज्ञान है, पहली चीज तो क्या है, प्रमाण भी ज्ञान है, नये भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान है। एक ज्ञान सिर्फ एक एंगल से देख रहा है, जो एक एंगल से देखे उसका नाम है, उस ज्ञान का नाम है नय। एक एंगल है, हो सकता है थोड़ी देर बाद में एंगल बदल जाए। देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, झगड़े निपट जाएंगे सारे घर घर के। आप यदि एंगल बदल बदल करके देखोगे तब तो आप अनेकांतवादी हो, अलग अलग एंगल से देख रहे हो, और आप एक ही एंगल से देख रहे हो तो पात्रता नहीं है, दूर दूर भव्य भी नहीं है, निकट भव्य होने की पात्रता कैसे आएगी। एंगल से देखो भाई, आपने देखा अपने घर गृहस्थी में और किसी के बारे में आपने बना ली धारणा, अरे यार ये तो ऐसा ही है, ये तो
कौन से नंबर पर है।
आप यदि किसी की बुराई करते हैं तो किसी की अच्छाई भी दिखनी चाहिए आपको। इसको साइलेंट कर दूं क्या यहाँ से, किसी की यदि आपको अच्छाइयां दिखती है तो बुराइयां, और बुराइयां दिखती है तो अच्छाइयां, दोनों पहलू है ना, दो ही नहीं, एक व्यक्ति को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हो। एक सज्जन आए मेरे पास में, बोले पंडित जी आपकी निगाह में कोई लड़का हो तो बताओ। मैंने कहा मेरी निगाह में तो बहुत सारे लड़के हैं, बता दू। मैंने कहा हमारे काम करने आता है, बहुत अच्छा काम करता है। बोले अरे क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा क्यों क्या हो गया, आपको लड़का चाहिए था, हमारे यहाँ काम करने आता है, आपके यहाँ भी भेज देगा। अरे नहीं नहीं अपनी लड़की के लिए चाहिए। अच्छा आप बताओ ना किस लिए चाहिए, लड़के तो बहुत है, आपको जॉब पर रखना है, आपको घर के काम के लिए रखना है, आपको अपनी पुत्री के लिए चाहिए, आपको किस काम से चाहिए, आपको ड्राइवर रखना है, आपको घर में झाड़ू पोछा कराना है, लड़का किस लिए चाहिए आपको। तो जब तक वो एंगल आपके ख्याल में नहीं होगा तब तक लिया गया निर्णय या दिया गया जवाब दोनों सही नहीं होंगे। आत्मा कैसा है उसके बारे में निर्णय करो कि नये से देखो। सबसे पहले नये से देखने से क्या होता है, बारीकी से देखा जाता है वस्तु को, नये बारीकी से दिखाता है, नये सूक्ष्मता से दिखाता है, नये किसी भी चीज को हाईलाइट करके बतलाता है, क्योंकि एक ही है ना उसके पास में, दूसरी चीज है ही नहीं, एक ही पॉइंट देखना है वही हाईलाइट होगा। जैसे समझिए जनरल फिजिशियन डॉक्टर, जनरल फिजिशियन है और एक आंखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। सतीश भाई आपके स्पीच कैसे तो अभी स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है किसी चीज के। अभी हमने ये कहा कि आपको आंखों में प्रॉब्लम है तो जनरल फिजिशियन को दिखाना कि नहीं दिखाना, बोलो। आंखों में प्रॉब्लम है तो जनरल फिजिशियन को दिखाएंगे कि नहीं? आंखों वाले को दिखाएंगे भाई कि क्यों, अरे हुआ इसको तो सिर्फ आंखों का ज्ञान है, उसको तो पूरे शरीर का ज्ञान है। बोलो क्या इम्पोर्टेंट है? आंख इम्पोर्टेंट है, माने जो पार्ट दिखाना है उस पार्ट को स्पेशल जानने के लिए आपको उतने एंगल से देखना पड़ेगा, वो है नए। और प्रमाण क्या चीज है? प्रमाण भी जो पूरी वस्तु को दिखाता है, ऐसे ग्लांस पूरा दिखाए, उसका नाम है प्रमाण। प्रमाण पूर्वक नए सच्चे होते हैं, प्रमाण से पूरी वस्तु को जानो, फिर नए से किसी एक अंश को हाईलाइट करो।
सम्यक दर्शन की विधि बता रहा हूं,
सम्यक दर्शन की विधि क्या है, सम्यक दर्शन का प्रोसेस क्या है, सम्यक दर्शन प्रकट करने का, बोलो। सबसे पहले प्रमाण का प्रयोग करो। प्रमाण का प्रयोग करके क्या करें कि आप प्रमाण से जानो कि आत्मा कैसा कैसा है, पूरी तरह से कि आत्मा है अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्तियों का भेद अखंड पिंड है। प्रमाण से जान लिया हमने, अब नए से जानने में क्या करना? पर नए से जानते समय अब एक एक एंगल को जानो, आत्मा के एक एक फीचर को जानो। सुबह करेंगे अपन चर्चा, सुबह वाले सेशन में, उसमें जब छठी गाथा की चर्चा करेंगे अपन समय पर, प्रमत्ता प्रमत्ता नहीं है, ज्ञायक भाव है, फिर उसकी ज्ञायक भाव को दिखाएंगे, फिर एक एक एंगल से अपन बारीकी से उस एंगल को देखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे पहले पूरा एक जनरल जान लिया हमने, फिर जनरल जानने के बाद में अब एक एंगल से हमने जाना कि आत्मा का ज्ञान गुण क्या है, बारीकी से ज्ञान के बारे में। यहाँ उमा स्वामी आचार्य ज्ञान की व्याख्या करने वाले हैं। आगे दर्शन गुण से चर्चा करो, फिर कभी चारित्र गुण से चर्चा करो, फिर कभी और गुणों से चर्चा करो। आत्मा अनादि अनंत है, जीवत्व शक्ति देखो, जीवत्व शक्ति का मतलब क्या होता है, चिति शक्ति का मतलब क्या होता है, दृष्टि शक्ति मतलब क्या होता है, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, रुद्र शक्ति, एक एक शक्ति से देखो। फिर इन सब से देखने के बाद क्या करो, अलग अलग देखा, ये नए से देखना हुआ, फिर नए से देखने के बाद में फिर पूरी अभेद करो वस्तु को वापस। जैसे पहले आप ये निर्णय करो कि मुझे खीर बनानी है कि खीर खानी है, ये हो गया प्रमाण। निर्णय किया हमने खीर बनानी है खीर खानी है, ये प्रमाण हो गया। फिर क्या करना, खीर में क्या क्या चीजें डलती है और खीर कैसे बनती है, एक एक एंगल से देखना उसको, ये कहलाएगा नए। फिर क्या करना, उन नयों के माध्यम से उस पूरी वस्तु को गहराई से जानकर, देखकर, समझकर, फिर क्या करना, अब जो खीर बना, अब इन सबको मिलाओ, अलग अलग नहीं, और मिलाने के बाद जो वापस प्रमाण हुआ, बोले अब करो अनुभव, अब खाओ। तो आत्म वस्तु के अनुभव के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आत्मा के अनुभव के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रमाण। सबसे पहला स्टेप है प्रमाण। प्रमाण समझ में आया कि आपको प्रमाण क्या चीज है? प्रमाण का मतलब प्रामाणिक नहीं है, प्रूफ नहीं है, इसका क्या प्रमाण है, किसी चीज के बारे में कहते हैं इसका प्रमाण दो, बोले नहीं नहीं प्रमाण की बात नहीं है, हमें कोई प्रमाण नहीं मांगना है आपसे, बस सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, न्याय शास्त्रों की लाइन है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, पूरी वस्तु को जानना ही प्रमाण है। आत्मा कैसा है, नित्य है या अनित्य है? नित्य है, अनित्य नहीं, मेहर भाई तो कह रहे हैं दोनों हैं, मनोज भाई कह रहे हैं कि एक ही है, आगे बैठे मनोज भाई, क्या करूं? हाँ दोनों पहलू हैं, तो इतना माने फिर हम तो नित्य ही मान रहे थे आत्मा को, आत्मा को नित्य मत मानो, पर क्या कह रहे हो आप, उल्टी सीधी पढ़ा रहे हो आप, पहले वाले पंडित जी पढ़ा करके गए थे कि नित्य मानो, आप कह रहे हो नित्य मत मानो, क्या कर रहे हो? हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं महेंद्र भाई, आप क्या अलग अलग पंडितों को बुलाते हो यहाँ? कह रहे नहीं भाई, कंफ्यूज होने का सवाल नहीं है, दोनों में झगड़ा नहीं है, बहुत घनिष्ठ दोस्ती है, आपको पता नहीं है, पूछना महेंद्र भाई से। नित्य भी है क्या और अनित्य भी है, और नित्यता और अनित्यता का आपस में विरोध नहीं है, अनित्यता के साथ में नित्यता और नित्यता के साथ में अनित्यता, इन दोनों बातों को एक साथ एट ए टाइम वस्तु धारण करती है। इसका नाम अनेकांत है, इसका नाम प्रमाण है। फिर क्या करना कि कभी किसी बात को हाईलाइट करो, तो कभी कह देते हैं नित्य है, कभी कह देते हैं अनित्य है, कि दोनों बातों में से सही कौन सी, दोनों सही है। हमने पूछा आत्मा कैसा है, नित्य है अनित्य, एक ने कहा नित्य, दूसरे ने कहा अनित्य, दोनों सही है। कब? कि जब दोनों को प्रमाण दृष्टि है तब। मैं यदि प्रमाण से आत्मा को नित्य अनित्य मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, तो फिर कुछ भी कहो क्या फर्क पड़ता क्या? प्रमाण दृष्टि से आत्मा को यदि नित्य अनित्य स्वीकार कर लिया जाए, भले कितनी भी देर तक अनित्यता के गीत गाओ, कोई अंतराज नहीं है महेंद्र भाई। पहले प्रमाण मानना पड़ेगा, पहले प्रमाण होता है, पहले नक्की करो, प्रमाण माने क्राइटेरिया नक्की कर दिया, दायरा, इसको कहते हैं चतुष्टय, इसको कहते हैं मर्यादा, बाउंड्री बना ली हमने। एक प्रसिद्ध वाक्य आपने कई बार सुना होगा रंजन मैन, प्रमाण से बाहर निकलना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, है ना, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, प्रमाण से बाहर निकलना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। कि प्रमाण से बाहर नहीं निकलने का मतलब, अरे अपनी मर्यादा और अपनी बाउंड्री को छोड़कर बाहर निकलने की बात मत करो, अपनी सीमा में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। कभी कभी कहते हैं ना भैया, अपनी मर्यादा में रहे, अपनी सीमा में रहे, अपनी सीमा से बाहर मत निकलो, सीमा बांधो पहले अपनी एक। ये सीमा बांधना बहुत जरूरी है, सीमा नहीं बंधती है तो ये जीव स्वच्छंदी हो जाता है, और सीमा बंधती है तो मर्यादा में आ जाता है। विवाह भी एक सीमा है, आपको पता है, नियम प्रतिज्ञाएं भी सीमाएं मर्यादाएं हैं। हमने मर्यादा ले ली रात्रि भोजन त्याग, हमने मर्यादा ले ली 8 बजे बाद में नहीं खाएंगे, हमने मर्यादा ले ली इस चीज का त्याग करते हैं, हमने ये जो बाउंड्री बना ली गई है हमारे द्वारा, ये बहुत बड़ा काम है, और उस बाउंड्री का उल्लंघन नहीं करना फिर कभी लाइफ में, क्योंकि एक बार मर्यादा का उल्लंघन किया था सीता ने, आपको पता है लाइफ टाइम भुगतना पड़ा उसे, लक्ष्मण रेखा खींची गई थी ना, मर्यादा खींच गया था वो, और उस मर्यादा का उस रेखा का उल्लंघन कर दिया सीता ने, फिर क्या हुआ, पूरी रामायण भी खड़ी हुई। जितनी रामायण है महाभारत में क्या किया, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं, बस वो मर्यादा का उल्लंघन किया पांडवों ने, खेलने की मर्यादा, सीमा का उल्लंघन, जितना जेब में था उतना तो चला गया, अब उसके अलावा भी दूसरी चीज को लगा दिया, ये मर्यादा का उल्लंघन। ऐसे ही हमारे द्रव्य की भी एक मर्यादा है, द्रव्य का भी एक चतुष्टय है, द्रव्य की भी एक सीमा है, द्रव्य की भी एक बाउंड्री बनी हुई है, उन बाउंड्री का नाम है चतुष्टय, उस बाउंड्री को कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। जब इन द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ग्रुप से देखा जाता है, चतुष्टय से देखा जाता है, समग्र देखा जाता है, तो होता है प्रमाण, और सिर्फ द्रव्य से देखो वस्तु को, सिर्फ क्षेत्र से देखो, सिर्फ काल से देखो, सिर्फ भाव से देखो, तो होता है नए। समझ रहे हैं? चार है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चार में से एक देखो तो नए, और चारों को युक्त लगाओ तो प्रमाण। चार में भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की विवक्षा और लगाओ तो बेटर प्रमाण। वस्तु कहती है सामान्य विशेषात्मक, नित्यानित्यात्मक, भेदा भेदात्मक, एकानेकात्मक, ये चतुष्टय है। कुछ नहीं समझ में आ रही होगी अभी आपको, थोड़ा सा कठिन लग रही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझते हैं सतीश भाई, चंद्रकांत भाई? द्रव्य माने वस्तु, क्षेत्र माने एरिया, काल माने टाइम फैक्टर, भाव माने गुण, गुण धर्म शक्तियां, क्षेत्र माने क्या है एरिया, काल माने टाइम, भाव माने गुण क्वालिटी, गुण धर्म शक्तियां पावर, ये सब क्या है भाव वाले पक्ष में। बोले ये चार चीजें हैं, ये चारों चीजें साथ में चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनको छोड़ करके कोई घटना नहीं होती, इनको छोड़ के कोई परिस्थिति नहीं होती, इनको छोड़ करके कोई वस्तु नहीं होती, जहां वस्तु होगी वहां चार बातें नियम से होगी, चार बातें नियम से होगी, जहां भी वस्तु होगी, जहां भी पदार्थ होगा वहां चार बातें नियम से होगी। जैसे समझो अपनी बात करें, अपन कौन है? द्रव्य, अपन द्रव्य है, द्रव्य है तो कोई क्षेत्र में होंगे कि नहीं, कितने किसी क्षेत्र में कि नहीं, नहीं द्रव्य तो है लेकिन किसी क्षेत्र में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य हो और किसी क्षेत्र में नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा वस्तु है तो वस्तु का क्षेत्र भी है, टाइम होगा कि नहीं होगा, कोई ना कोई टाइम भी होगा, बिना टाइम की वस्तु कैसे हो सकती है, टाइम भी होगा, ठीक है, क्षेत्र भी हो गया और काल भी हो गया। अच्छा वस्तु तो है लेकिन इसमें कोई गुण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? वस्तु है उसमें गुण जरूरी है। सुनो दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी वस्तु में कोई गुण नहीं हो, गुण के समूह को ही वस्तु कहते हैं। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने किसी वस्तु को देख करके कहा कि इसमें कोई गुण नहीं है, बिल्कुल बेकार है, और आपने बेकार जानकर के क्या किया, उसको निकाल दिया, बेकार जानकर के आपने उस वस्तु को निकाल दिया। सुनो आपने तो निकाला लेकिन किसी ने अच्छा समझ के उसको ले लिया, रद्दी वाला आपके यहां भी आते हैं क्या रद्दी वाले, क्या अमेरिका में होते रद्दी वाले? नहीं होते, अपना इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा तो जो वेस्ट है उस वेस्ट में से भी निकाल देंगे, इसका मतलब एक व्यक्ति के लिए कोई वस्तु किसी काम की नहीं है, वही वस्तु किसी दूसरी व्यक्ति के लिए काम की हो सकती है। समझो आप ये किताब घर ले गए, आत्मविशुद्धि उपयोगी जान करके ले गए, आपको बहुत उपयोगी है, आपके घर में रही 2 साल 5 साल 10 साल, फिर क्या हुआ, आपका स्वर्गवास हो जाने के बाद आपके बच्चे इसे डेरा तक ला करके रख गए कि हमारे किसी काम की नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं ये वस्तु काम की है या नहीं है, है या नहीं है, है भी और नहीं भी, दोनों पहलू हैं इसमें। वस्तु की अपेक्षा से बात करूं, वस्तु में वस्तुत्व की अपेक्षा से बात करूं तो उसमें अपनी क्वालिटीज तो हमेशा है, आपको काम आ रही है क्या नहीं आ रही है, इसके गुणधर्म इसमें से कभी नहीं निकलेंगे। गुणों से सही सी वस्तु होती है, आप काम में दो तो ठीक है। अच्छा ये घड़ी क्या टाइम चल रही है, चल रही है, आप देखते हैं तब चलती है, और अपन लोग जब तब चले जाएंगे महेंद्र भाई तब चलेगी कि नहीं, तब भी चलेगी, फिर किसके लिए चलेगी, उसका काम ही करना है, किसी के लिए से क्या मतलब है? वस्तु का स्वरूप परिणमन करना है। अब सुनो, आत्मा की बात करो, आत्मा द्रव्य, मैं द्रव्य, क्षेत्र बताओ क्या इसके अंदर है? असंख्यात प्रदेशी, ये एरिया है आत्मा का। आत्मा का भी अपना एरिया है साहब, अपने एरिया में अपनी चलती है और एरिया के बाहर अपनी बिल्कुल नहीं चलती है। सबका अपना अपना एरिया होता है। हमारे वहां पे इंडिया में जो डॉग होते हैं उनका भी एरिया होता है, डॉग का अपने अपने दूसरा एरिया का आ जाता है ना, भौंकने लगते हैं, तो सबका एरिया होता है। तो आत्मा का अपना एरिया है, सबके अपने अपने एरिया में चलती है, एरिया के बाहर किसी की नहीं चलती, जान रहे? जैसे नरेंद्र मोदी का एरिया इंडिया और ट्रंप का एरिया अमेरिका, तो ये ट्रंप की रशिया में चलती है या नहीं? बिल्कुल नहीं चलती। तो नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान में चलती है या नहीं? बिल्कुल नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उसका एरिया है। देखो इनमें उदाहरणों में तो सबको समझ में आता है। अब हम इसको अप्लाई करें, आत्मा का एरिया आपने क्या कहा? असंख्यात प्रदेश, वो आत्मा का एरिया है। और तुम कौन हो? कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा एरिया कितना है दिनेश भाई? असंख्यात प्रदेश, मैं आत्मा हूं। ध्यान से देखना, देखो हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है, बहुत सीरियस मैटर चल रहा है, लेकिन सीरियस होके मत सुनना। मैटर क्या है? मैं आत्मा हूं, आत्मा का एरिया असंख्यात प्रदेश। पहले हमने एक नियम बनाया, प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने एरिया में ही चलती है, ये नियम बनाया। इस नियम को हमने सब जगह पर अप्लाई किया दुनिया में, तो हमने पाया ये नियम 100% परफेक्ट है। बच्चे की चलती है या नहीं? चलती है। कितनी? अपने दायरे में चलती है। घर में हस्बैंड की चलती है या नहीं? चलती है। ये कितनी? कि अपने दायरे में चलती है। वाइफ की, उनकी, अपने, सबका अपना अपना एक सर्कल है, सबका अपना दायरा है, सबका अपना लेवल है, सबका अपना स्टेटस है, उस दायरे में चलती है, उसके बाहर किसी की नहीं चलती। तो आत्मा की आत्मा के एरिया में चलेगी, ये कह रहा हूं मैं। अपने एरिया से बाहर चलाने की कोशिश करोगे तो चलेगी नहीं और तकलीफ पाओगे। क्या अपने असंख्यात प्रदेशों में आत्मा की चल सकती है, और असंख्यात प्रदेशों के बाहर यदि तुम आत्मा की चलाने का प्रयास करोगे तो आत्मा की नहीं चलेगी, तुम तकलीफ पाओगे, पीड़ा पाओगे, संकट में आ जाओगे। बोलो, हम अनादिकाल से आज तक क्या कर रहे हैं महेंद्र भाई? ये गड़बड़ हो रही है। अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, जहां चलती है वहां चलाता नहीं है, और जहां नहीं चलती है वहां जबरदस्ती चलाने की कोशिश करता है, इसके दुखी होता रहता है। क्या करें बोलो? कहां चलाएं और कहां नहीं चलाएं? जहां चलती हो वहां चलाओ। देखो ईमानदार काम करने वाला कौन? ईमानदारी से आपके यहां सर्विस करने वाला कौन? जॉब ईमानदारी से करने वाला कौन? जितनी उसकी चलती है उतनी वो ईमानदारी से कहता है कि यहां मेरी चल सकती है, यहां पे इतना तो काम मेरा हो सकता है, यहां मेरी चलती नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो ईमानदार है ना? अभी यहां भी वही बात कह रहे हैं हम, वस्तु स्वरूप के प्रति ईमानदार बनो, ये ईमानदार है निकट भव्य। महेंद्र भाई मैं क्या करूं, मुझे तो यही दिख रहा है बार बार। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, ये ईमानदार है, ये अतिक्रमण नहीं करता है, ये अपनी मर्यादा के बाहर चलाने का प्रयास नहीं करता है, ये जहां चलती है वहीं देखता है, ये उसके बाहर नहीं देखता है दिनेश भाई, ये निकट भव्य है। आपको यदि लगता है कि मैं निकट भव्य हूं तो आप अपनी मर्यादा में चलाओ। अब मर्यादा के बाहर सुनो, असंख्यात प्रदेशों की मर्यादा के बाहर आपके बाल काले से सफेद हो रहे हैं। बोलो, चलती है आपकी? सब तरह के लोग मिलते हैं महेंद्र भाई मेरे को, जब मैं ऐसी बात कभी कह देता हूँ कि आपके बाल काले से सफेद हुए तुम्हारी चलती है, तो कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, वो कहते पंडित जी बात तो आपकी बिल्कुल सही है, काले से सफेद हुए इसमें तो नहीं चलती है, लेकिन सफेद से काले करने में तो हमारी चलती है। काले करने में चलती है अपनी, इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि वो मेरे क्षेत्र के बाहर है, मर्यादा के बाहर है, वो मेरे एरिया के बाहर है, मेरे एरिया में नहीं आता काम, मैं नहीं करा सकता हूँ आपका काम, वो मेरे एरिया में नहीं आता है, मेरे सर्कल में नहीं आता है। मेरे एरिया में आया होता तो मैं खड़े रहकर के काम करवाता महेंद्र भाई आपका, लेकिन वो मेरे एरिया के बाहर की बात है, वहां मेरी नहीं चलती है। एक ऑफिसर भी ये बात करता है, हम ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप ये कह रहा है तुम्हारे एरिया के बाहर है शरीर, तुम्हारे एरिया के बाहर है परिवार, तुम्हारे एरिया के बाहर है समाज, तुम्हारे एरिया के बाहर है ये सारे सहयोग, मत चलाओ इन पर, मत चलाने की चेष्टा करो, जबरन मत दौड़ो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करो, मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास करोगे तो उसकी सजा मिले बिना नहीं रहेगी, मिलेगी सजा आपको। सीमा में बांधो, कौन सी सीमा हुई है? क्षेत्र की सीमा। द्रव्य तो मैं आत्मा हूं, क्षेत्र मेरा असंख्यात प्रदेश है, काल क्या है? समय, टाइम, टाइम, टाइम तो दो तरह से हो सकते हैं, एक अनादि अनंत वो भी टाइम है, और एक वर्तमान समय की पर्याय वो भी टाइम है। क्या? तो एरिया और उसके साथ में जुड़ा होता है टाइम, सबका अपना अपना टाइम होता है साहब। आप कभी कभी टाइम की बात करके गम नहीं खाते हैं? क्या करें साहब, कोई बात नहीं, आज तेरा टाइम है, ठीक है, अपना भी टाइम आया था बोलते हैं ना ऐसा, अभी उसका टाइम है। तो हम ये कह रहे हैं यदि तुमने अपने टाइम को यदि पहचान लिया, और टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता इसे पहचान लिया, और बदलते हुए टाइम में भी नहीं बदलने वाला एक तत्व सदाकाल रहता है इसे पहचान लिया, तो तुमने नित्यता से वस्तु को पहचाना, नित्यता से वस्तु को पहचाना, एक काल नामक फैक्टर से वस्तु को पहचाना, ऐसी भाव से पहचाना, नित्यता अच्छी है या अनित्यता अच्छी है, काल काल में नित्यता अनित्यता दो बातें नहीं ना पन्ने, नित्य अच्छी चीज है या अनित्य अच्छी चीज है, समझ भाई क्या पसंद है आपको, नित्यता या अनित्यता? अनित्यता पसंद है आपको? क्या पसंद है सतीश भाई, इनको नित्यता पसंद है, आपको फैसला करो दोनों में से क्या बेस्ट, दोनों पसंद है? नहीं है तो दोनों नहीं, होने में ऐतराज नहीं है, मैं कह रहा हूं नित्यता भी वस्तु में है, अनित्यता भी वस्तु में है, लेकिन दोनों में से आपको पसंद क्या है? पसंद ना पसंद वस्तु में नहीं चलती है, ये बात बराबर है, ठीक है, फिर भी आपको क्या पसंद है दोनों में से? हाँ सही बात है, दो में से एक को पसंद करने से काम नहीं चलेगा, कभी नित्यता कभी अनित्यता, सतीश भाई और रमेश भाई को दोनों को मिला दो आपस में, इनको नित्यता पसंद है उनको अनित्यता पसंद है, तो क्या करना है कि सुनो, नित्यता पर दृष्टि रखो और अनित्यता को चेक करो, क्या नित्यता पर दृष्टि रखो और अनित्यता में दुख का अंत, नित्यता पर दृष्टि रखो और अनित्यता में संकट संसार दशा राग द्वेष विकार कर्म इन सबका अभाव, काम अनित्य पर्याय में होना है, लेकिन अनित्य पर्याय को देखने से अनित्य में काम नहीं होगा, नित्यता को देखने से अनित्य क्षणिक पर्याय में काम होता है। ये जो काम होता है ये काम तो पर्याय में होना है, लेकिन अवलंबन द्रव्य का करना है। कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं पंडित जी हमें तो नित्यता पसंद है, अनित्यता को निकाल, अनित्यता किस काम की है, अनित्यता का क्या मतलब है, क्या करेंगे अपना अनित्यता का। सुनो भाई सारे काम ही अनित्य में होंगे, यदि तुम नित्य ही नित्य मानोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत कैसे होगा। तुम सिर्फ अनित्य मानोगे तो संसार का अंत कैसे होगा, राग द्वेष का अंत कैसे होगा। ये तो सब अनित्य है, इनको अनित्य रूप से स्वीकार करो। और कैसे अनित्य स्वीकार करो कि नित्य का अवलंबन लेकर के, माने यदि ये अनित्य पर्याय नित्य स्वरूप का अवलंबन लेगी तो निश्चित रूप से ये अनित्य पर्याय के दुख संकट कष्ट सदा के लिए चले जाएंगे। वस्तु के दो पहलू हैं, एक पहलू देखने के लिए है, अवलंबन करने के लिए है, और दूसरा पहलू अवलंबन करने वाला है। एक करने वाला और एक जिसका अवलंबन किया जाए वो, ये दो चीजें अलग अलग, नित्यता नित्यता भी चाहिए। इसी तरह से एक बात हमने कही, गुण भी चाहिए, धर्म भी चाहिए और शक्तियां भी चाहिए। आत्मा के गुण धर्म शक्तियों की बात कर लो, किसी भी वस्तु के गुण धर्म शक्तियों की बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुणों से वस्तु की पहचान होती है, गुण से देखा जाता है वस्तु को, धर्म से देखा जाता है, शक्तियों से देखा जाता है। तो ये चार पहलू कहे, एक का नाम था द्रव्य, दूसरे का नाम क्षेत्र, एक का नाम काल और चौथे का नाम भाव। इसमें से क्या पसंद आया आपको? चारों, चारों, और चारों को मिलाकर के युगपत पूरी वस्तु को देखना वो कहलाता है प्रमाण, और एक एक एंगल से देखना वो कहलाता है नय। नय माने दृष्टिकोण, नय माने एंगल, नय माने नजरिया, नय माने वस्तु को देखने वाला दृष्टिकोण। एक ही वस्तु को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं मनोज भाई? क्या गया अंकल, छोटे हैं कि बड़े हैं? दोनों छोटे बड़े, छोटे बड़े कहते होंगे, एंगल से देखना पड़ेगा, अरे आपको एंगल बतलाना पड़ेगा, किस एंगल से पूछ रहे हो, किस एंगल से बात कर रहे हो। अच्छा, सम्यक दृष्टि को इच्छा होती है कि नहीं होती है? होती है, सही से बतलाओ, होती है? हाँ, मोक्ष की होती है। फिर हमने कहा अनिच्छुक, सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती, अनिच्छुक होता है कि हाँ, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि निकांक्षित नाम का अंग है ना, निशंकित, निकांक्षित। निकांक्षित का मतलब कांक्षा माने होता है इच्छा, निकांक्षा इच्छा से रही है। सम्य दृष्टि जीव को भय होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, वो कह रहे होता है, चलो कर लो ना, कर लो जरूरी है। सप्त प्रकार के भय नहीं होते क्या? और चारित्र मोहों की कमजोरी से भय होता है? दोनों बातें लगी। माने मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी बात में सर्वथा नहीं लगता, आप यदि अपेक्षा लगा लेते हैं तो आपकी बात सच्ची हो जाती है, आप यदि अपेक्षा को नहीं समझते हैं तो आपकी बात झूठी हो जाएगी। अपेक्षा लगाने से हर वस्तु में अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं हैं। हम कहते हैं देखो बहुत तरीके की बातें हैं, नाई के संदर्भ में तो इतनी बातें कर सकता हूं मैं आपसे, बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, जब भी नाई की चर्चा करता हूं मैं कहता हूं नींबू कैसा होता है, कैसा होता है पक्का? देखिए पीला होता है, गोल होता है, खट्टा भी होता है, मतलब अलग अलग अपेक्षाओं से बात की जा सकती है। मिश्री कैसी होती है चंद्रकांत भाई? होती है पक्का, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, होती है। हमने ये पूछा था कि आप उसका टेस्ट बताओ, लेकिन एक एंगल से देखा क्या, एक ही व्यक्ति को देखने के कई नजरिए होते हैं, एक ही वस्तु को देखने के कई नजरिए होते हैं और सब एंगल से बात सच्ची होती है। ऐसे आत्मा को देखने के अलग अलग प्रकार के नजरिए, कभी हम ज्ञान से देखते हैं, कभी दर्शन से देखते हैं, अरे कभी कभी हम ऐसी बात करते हैं आत्मा कैसा होता है, बोले ज्ञान स्वभावी होता है। दूसरे व्यक्ति से मिले बोले आत्मा कैसा होता है, बोले सुख स्वभावी होता है। एक व्यक्ति से मिले बोले आत्मा कैसा होता है, बोले नित्य होता है। एक दूसरे व्यक्ति से मिले बोले आत्मा कैसा होता है, बोले अमूर्तिक होता है। यार ये सब अलग अलग बातें करते हैं, आत्मा कैसा होता है बोलो। ज्ञान स्वभावी जीव सत्व को आत्मा कहते हैं, ये भी तरह के ज्ञान पाठमाला की परिभाषा है। ज्ञान स्वभावी जीव सत्व है आत्मा, नित्य भी है लेकिन अमूर्तिक भी है। बहुत सारे पहलू हैं आत्मा में, आत्मा को देखने के बहुत सारे एंगल हैं। आप कैसा देखते हो आत्मा को बोलो, कैसा देखते हैं? तो आप देखते हैं प्रमाण, देखते हैं बेटा, आइडिया तो ठीक है लेकिन आप देखते हैं क्या? वस्तु प्रमाण से देखी जानी चाहिए, आत्मा को प्रमाण से देखो। इसे कहते हैं आजकल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में ब्रॉड माइंड, सब एंगल से देखता है। एक एंगल से देखता है, अकेले अनिश्चितता की बात करता है, अकेले क्षणमंगलता की बात करता है। नहीं नहीं नहीं, बड़ा बनाओ अपनी सोच, बड़ी रखो, इतनी बड़ी सोच रखो अनंत गुणात्मक आत्मा उसमें देखने लगे। ये प्रमाण दृष्टि है, प्रमाण में दोनों एंगल की जरूरत है। जब फील किया जाता है, जब अनुभव किया जाता है तो प्रमाण होता है, अनुभव प्रमाण है। यहाँ एक वाक्य लिखा था, ज्ञान के लिए अनुभूति लिखा हुआ था, ध्यान है आपको, नंबर दो में सेंटर में, कल जो चार्ट बनाया था, बना हुआ था उसमें, तो उसमें क्या कहा, ज्ञान अनुभव है और अनुभव प्रमाण है। अनुभव में नए नहीं होता, उसमें अपेक्षा नहीं होती, फीलिंग में अपेक्षा नहीं होती, फीलिंग में एंगल नहीं बतलाए जा सकते, जो है तो है बस। तो जो अनुभव प्रमाण है उसकी चर्चा तो सुबह चलती है, जो है तो है। छठी गाथा, छठी गाथा क्या है, मैं एक हूं, एक ज्ञायक भाव हूं, अप्रमत्त नहीं हूं, प्रमत्त नहीं हूं, तो कहता हूं अब जो है तो है। इसका नाम है प्रमाण दृष्टि। इसलिए यहां दो दृष्टियों की ज्ञान करने की बात कही, एक प्रमाण दृष्टि और दूसरी नए दृष्टि। नए से भी देखो, प्रमाण से भी देखो, प्रमाण से देखो और नए से भी देखो, सभी एंगल से देखते रहो। चलो आगे, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान से है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश सबसे पहला एंगल बतला रहे हैं, अब अलग अलग एंगल बतला रहे हैं वस्तु को जानने के। निर्देश माने होता है नाम, निर्देश माने क्या है, नाम। सबसे पहले तो जानो आप नाम, कि साहब मेरे को एक चीज चाहिए। महेंद्र भाई एक चीज चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, नाम बताओ। आपका पहला वाक्य क्या होगा, नाम बताओ पंडित जी क्या चाहिए, नाम बताओ। नाम तो नहीं पता, या नाम ही नहीं पता तो फिर मैं क्या बता सकता हूं। अब क्या चाहिए उसका नाम तो बताओ, नाम। इसे कहते हैं निर्देश। फिर हमने नाम बता दिया, हमने कहा वॉच, हमने क्या कहा घड़ी, नाम बता दिया। तो निर्देश के बाद में सेकंड ऑप्शन दिया स्वामित्व, बोले कंपनी बताओ, कौन से ब्रांड की चाहिए आपको। निर्देश के बाद में स्वामित्व, आर के समझ में आ रही है, पहला पॉइंट है निर्देश। निर्देश माने होता है नाम, फिर स्वामित्व, स्वामित्व माने क्या होता है, मालिक कौन है, मालिक कौन है उसका, स्वामी कौन है, कंपनी कौन सी है, उसे कहते हैं हम स्वामित्व। स्वामित्व हो गया, वस्तु को जानते समय पहले नाम जानो, फिर उसके साधन को स्वामी को जानो, फिर क्या कह रहे हैं साधन, साधन मतलब क्या सामने आएगी, ये किस चीज से बनी है, साधन उत्पत्ति के हेतुओं को साधन कहते हैं। निर्देश माने नाम, स्वामित्व माने मालिक कौन है, निर्देश स्वामित्व, साधन माने उत्पत्ति का हेतु साधन, फिर अधिकरण, अधिकरण माने उस वस्तु का आधार, वो अधिकरण है, किस बेस पर है ये, किस चीज से बनी है, आधार उसका क्या है, किस चीज से है ये, फिर अधिकरण, फिर स्थिति, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, टाइम पीरियड कितनी चलेगी, गारंटी वारंटी कुछ स्थिति के बारे में, स्थिति क्या है, कितने समय तक चलेगी, ये स्थिति है। और विधान माने भेद प्रभेद, और उसके भेद प्रभेद बतलाना, ये कहलाता है विधान। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, कितने अनुयोग हो गए यहाँ, छह बातों से वस्तु को पहचानने की बात कर रहे हैं। हमेशा ऐसा ही होता है, मार्केट में जाते हैं, किसी वस्तु को देखा हमने, बहुत सुंदर दिख रही है, उन्हें ये क्या है, उसने नाम बतला दिया, कौन सी कंपनी की है, स्वामित्व बतला दिया, फिर हम कैसे बनी है ये कैसे बनी है, तो साधन बतला दिया, फिर इसका बेस क्या है, अधिकरण हो गया, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, स्थिति हो गई, और इसके इसमें कितने मॉडल्स हैं, कितने प्रकार हैं, ये उसका विधान हो गया। तो जब आप इन छह बातों के बारे में प्रश्न करते हैं दुकान पर खड़े होकर के, शोरूम पर खड़े होकर के, तो फिर आप निर्णय कर पाते हैं कि इस वस्तु को लेना या नहीं लेना। ये निर्णय इन छह बातों के आधार पर होता है, इसलिए एंगल बतला रहे हैं उमा स्वामी आचार्य, कुछ नहीं, आप तो याद करो बस, ये छह एंगल हो सकते हैं। और भी एक विशेषता है, वो देखो क्या है, तत्व, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावार्थ, बहुत्वैश्य, आठ नंबर सूत्र, सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावार्थ, बहुत्वैश्य, सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावार्थ, बहुत्वैश्य, ये आठ बातें कह दी है यहाँ। कौन कौन सी, एक है तत्व, सबसे पहले तत्व जिसकी चर्चा की जा रही है उसका अस्तित्व है। सुनो, हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं ना आपसे, दो तीन दिन से जो हम आत्मा की बात कर रहे हैं आपके सामने, उस आत्मा का अस्तित्व है, हवा में नहीं है, वो है तत्व। फिर दूसरी अपेक्षा से देखो तो संख्या, आत्माएं कितनी है, अनंत है, असंख्यात तो प्रदेश है, आत्मा अनंत है, अनंत आत्माएं हैं, संख्या हो गई। संख्या की दृष्टि से देखो, अभी भेद की दृष्टि से देखेंगे तो तीन कह देंगे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। क्षेत्र, आत्मा का क्षेत्र बतलाओ जल्दी, क्षेत्र, असंख्यात प्रदेशी, आप बोलते जाओ फटाफट, तो फिर टाइम कम है ना अपने पास में। क्षेत्र माने असंख्यात प्रदेशी। स्पर्शन क्या है, स्पर्शन माने देखो, क्षेत्र माने होता है वर्तमान में जिस जगह पर हो, ये क्षेत्र, और स्पर्शन होता है तो कहां से कहां तक टच करता है, माने कहां था और कहां जाने वाला है। हम जयपुर से आए हैं, ठीक है ना, या हम एलए से आए हैं अभी, और हम नॉर्थ कैरोलिना राले जाने वाले हैं, तो ये हो गया हमारा स्पर्श। वहां से वहां तक टच करना, और क्षेत्र में क्षेत्र तो अभी यहाँ बैठे मयामी में बैठे हुए, एक क्षेत्र हो गया, स्पर्शन हो गया। काल, काल क्या चीज है? वही ड्यूरेबिलिटी, कितने समय तक वस्तु ठहरेगी वो कहलाता है उसका काल। फिर काल के बाद में अंतर, अंतर माने होता है गैप, विरह काल। काल मतलब टाइम, और विरह काल को कहते हैं अंतर। विरह पड़ गया, जैसे वर्तमान में तीर्थंकरों का विरह है, तो कितने समय का वो अंतर कहलाएगा। कितने समय के अंतराल बाद में तीर्थंकर होंगे? बोले 84,000 वर्ष के अंतराल के बाद अंतर हो गया। इसी तरह से भाव की बात करूं तो औपशमिक आदि भाव, वो भाव है। फिर अल्प बहुत्व की बात करूं, भाव के बाद अल्प बहुत्व माने हीना दिखता, अल्प बहुत्व माने कम ज्यादा पना, अल्प बहुत्व माने कैसा कंपेरिजन, वो अल्प बहुत्व कहलाता है। बहुत तरह के ये सब अपेक्षाएं बतला रहे हैं एक्चुअल में, आपको ऐसे लग रहा होगा इतनी तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब अपेक्षाएं हैं। युगान प्रमाण नए अधिगम है वस्तु को जानने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, क्षेत्र से, काल से, पदार्थ से, किससे छोटी है, किससे बड़ी है, किससे कैसी है। ये तो अप्लाई करो ना इन चीजों को, तो बहुत तरह की बातें निकलती है। ये तो शॉर्ट में सब देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं पदार्थों को, तो अलग अलग एंगल से देखने की बात इन्होंने यहाँ कही। मुझे मालूम है आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार बहुत हो गया, पता नहीं क्या क्या बता दिया। आपको ऐसे लग रहा होगा निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान पे सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर बाल कैसे बता दिया है? तो समझ में नहीं आया हमारे को, सुनो समझ में नहीं आया, समझ में ज्ञान से आता है। बोले वो कितने आगे सूत्र दे दिया, आगे चर्चा ये ज्ञान की करने वाले हैं आगे के सूत्रों में, हम कल उन ज्ञान की चर्चा को आपके सामने करेंगे। और अभी संपन्न करें उससे पहले आर्य ये जो चैप्टर है ना जो आपके हाथ में है, ये सुना रहा है पूरा, आप मिलाना सही सही सुनाता है क्या? आ जाए जल्दी आ जाए, दो मिनट में फटाफट सुना।